हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेद शिवांशा के साथ अपने कमरे में था और आज उसने शिवांशा के सामने ये खुलकर बता दिया था कि वो उसके और अपने रिश्ते को एक चांस देने वाला है। हालांकि शिवांशा के सामने खुलकर ये बताना कि वो उससे प्यार करता है, ये वेद के लिए मुश्किल था। फिर भी वेद ने अपनी तरफ से प्यार का इजहार कर दिया था। भले ही वेद शब्दों के जरिए खुलकर कुछ ना कह पाया हो, लेकिन उसके हाव भाव और शिवांशा की हर छोटी जिद को पूरा करने की कोशिश साफ जाहिर कर रही थी कि उसके दिल में शिवांशा के लिए कितना प्यार है। शिवांशा तो कब का अपना दिल वेद के आगे हार चुकी थी। वेद की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद वो हर तरीके से उसे अपना बनाना चाहती थी। उसकी ये जल्दबाजी और उत्सुकता वेद समझ सकता था, पर वेद उसकी तरह इमेच्योर नहीं था। वो अच्छे से जानता था कि उन दोनों की शादी नहीं हुई है और बिना शादी के वो कभी शिवांशा के करीब नहीं आने वाला था। वेद ने शिवांशा को समझाया तो शिवांशा के चेहरे पर डर के भाव उभर आए थे। अगर सबको पता चल जाता कि उन दोनों की शादी नहीं हुई है तो जिस परिस्थिति में शिवांशा चौहान पैलेस में आई थी उस बारे में भी सब जान जाते। ऐसे में शिवांशा को यही डर सता रहा था कि वेद उसे छोड़ ना दे। वेद ने गहरी सांस ली और शिवांशा के पास आया। उसने शिवांशा का हाथ पकड़ा और उसे हल्के से सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हारे दिल का डर समझ रहा हूं, तुम्हें अपने इस डर पर काबू पाना होगा। आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा कि तुम देवराज ठाकुर की पोती हो। इससे पहले कि उन्हें कहीं और से पता चले, मैं खुद उन्हें सब बताऊंगा और ट्रस्ट मी, वे इस बात को समझेंगे भी। जब मैं पुरानी बातों को भूल कर तुम्हें दिल से एक्सेप्ट कर रहा हूं तो वे भी करेंगे। नहीं, वे नहीं करेंगे, मैं आपको खोना नहीं चाहती हूं। ठीक है, आपको बिना शादी के मेरे करीब नहीं आना है तो मैं उम्र भर आपके साथ बिना किसी रिश्ते के रहने के लिए तैयार हूं। आई प्रॉमिस कभी आपके करीब ही नहीं आऊंगी, लेकिन प्लीज किसी को कुछ मत बताइएगा, शिवांशा ने घबराई आवाज में कहा। शिवांशा की इनसिक्योरिटीज उस पर हावी हो रही थी। उसे वेद से दूरी बर्दाश्त थी, लेकिन वो अब उससे अलग नहीं रह सकती थी, बेशक फिर चाहे वेद उसे शादी तक ना करे। शिवांशा भले ही आगे तक की ना सोच पाए, लेकिन वेद सिर्फ प्रेजेंट का सोचकर कोई डिसीजन नहीं ले सकता था। वो इस बात को अच्छे से समझता था कि सच को चाहे कितने भी पर्दों के पीछे छिपा कर रख लो, लेकिन कभी ना कभी वो सामने आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ शिवांशा के साथ था। जिस तरह से लीला और राजावत फैमिली उसका सच बाहर लाने में लगी हुई थी, ऐसे में वो अच्छे से जानता था कि वो ज्यादा दिनों तक उन्हें रोक नहीं पाया था। उस हालत में तो बिल्कुल नहीं जब उसने शिवांशा के साथ रहने का फैसला किया था। ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। रही बात हमारी शादी की, तो मैं प्रतीक को बोल देता हूँ, वो हमारी शादी रजिस्टर करवा देगा, वेद ने शांत लहजे में कहा। अब शिवांशा को थोड़ा बेटर लग रहा था, उसने हाँ में सिर हिला दिया था। रात काफी हो गई थी, ऐसे में वो वेद को और जगाकर परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन साथ ही चौहान फैमिली के सामने अपनी पहचान खुलकर बताने के नाम से ही शिवांशा बेचैन हो गई थी। आगे उसने किसी तरह की जिद नहीं की। कुछ देर पहले वेद के साथ वो बच्चों की तरह अपनी जिंदगी को खुलकर जी रही थी, वहीं अब शिवांशा काफी असुरक्षित महसूस कर रही थी। वो पहले की तरह कमजोर और लाचार लग रही थी। वेद उसे ऐसा महसूस कभी नहीं करवाना चाहता था, उल्टा उसकी छोटी छोटी जिद पूरी करके उसे अच्छा लग रहा था। गुड नाइट, शिवांशा ने धीरे से कहा और काउच पर आकर लेट गई। वेद ने एक नजर शिवांशा की तरफ देखा और सोने के बजाय वो सोफे के पास जाकर जमीन पर बैठ गया। शिवांशा उठने को हुई, तभी वेद ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। वेद ने उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहा, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? कोई कुछ भी कहे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे आप पर पूरा यकीन है, लेकिन बात अगर आपके भाई बहनों और मुझ में से किसी एक को चुनने की आई तो फिर आप मुझे छोड़ देंगे। मैं इसके लिए आपको ब्लेम नहीं कर रही हूं, आप अपनी जगह पर सही हैं, पर सोचिए, आपकी पत्नी के तौर पर ही उन्हें मुझे एक्सेप्ट करने में इतना टाइम लग गया, तो मेरा सच जानने के बाद तो वे मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शिवांशा ने धीमी आवाज में कहा। उसका कहना भी गलत नहीं था। वेद के भाई बहनों में, खासकर नव्यांशी ने शिवांशा को बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट किया था। सिर्फ वेद ही नहीं, उसकी पूरी फैमिली देवराज से नफरत करती थी। ठीक है, फिर मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, शादी रजिस्टर हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब अपना मूड सही करो, वेद ने शिवांशा को समझाया। शिवांशा ने वेद की बात पर हामी भरी। जब तक उसे नींद नहीं आ गई थी, तब तक वेद प्यार से उसके बालों को सहला रहा था। वो उसे किसी बच्चे की तरह सुला रहा था। शिवांशा के सोने के बाद वेद अपने बेड पर आ गया था। उसने शिवांशा को तो ओवरथिंकिंग करने से रोक लिया था, लेकिन शिवांशा के डर ने वेद को सोचने पर मजबूर कर दिया था। लीला राजावत इन दिनों काफी शांत है, सबसे ज्यादा वही शिवांशा के पीछे पड़ी थी। अंकुश जेल में है और मैं उसे किसी भी हाल में बाहर नहीं निकलने दूंगा, तो उसकी तरफ से कोई टेंशन नहीं है, लेकिन लीला राजावत अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली है। मैं शिवांशा की आंखों में इस तरह डर कभी नहीं देखना चाहता, मुझे इस मामले में कोई ठोस कदम उठाना ही होगा, वेद ने अपने मन में कहा। कुछ ही देर में वो भी सो चुका था। अगली सुबह वेद की अलार्म के साथ आंख खुली तो वो हैरान था, क्योंकि शिवांशा भी उसके साथ जाग चुकी थी। वेद जल्दी से उसके पास आया और हैरानी भरे लहजे में बोला, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पूरी रात सोई ही नहीं?
नहीं, मैं पूरी रात आराम से सोई थी और मुझे नींद भी अच्छे से आई थी। आपको शाम को आने में देर हो जाती है और सुबह कोई बात नहीं हो पाती, तो मैंने जल्दी उठने का सोचा। अब तैयार हो जाइए, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ, शिवांशा मुस्कुराते हुए बोली। वेद ने उसकी बात पर हामी भरी। कुछ ही देर में वो जिम करके वापस लौटा। तब तक शिवांशा भी नहा चुकी थी, वो बस उसके आने का इंतजार कर रही थी। मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं, आप तैयार हो जाइए, शिवांशा बोली। वेद ने महसूस किया कि वो अपनी तरफ से एक अच्छी पत्नी होने की पूरी कोशिश कर रही है। वेद ने उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो कुछ भी कहकर उसके एक्साइटमेंट को मायूसी में नहीं बदलना चाहता था। वैसे भी कल रात उसकी वजह से वो परेशान हो गई थी। तैयार होकर वेद जब बाहर आया और नीचे जाने को हुआ, तभी शिवांशा उसके साथ दरवाजे तक ही आई। कल उसके साथ जो भी हुआ था, उसके बाद वो नीचे जाने से हिचक रही थी। नीचे चलो, वेद बोला। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, शिवांशा ने जल्दी से कहा। मैंने तुमसे पूछा नहीं है, तुम मेरे साथ नीचे चल रही हो, वेद ने इस बार सख्ती से कहा और शिवांशा का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती नीचे ले गया। सुबह सुबह शिवांशा को ब्रेकफास्ट टेबल पर देखने की किसी को आदत नहीं थी। अक्षत ने शिवांशा को देखते ही मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग विश किया। वहीं वेद नहीं चाहता था कि जो कल शिवांशा के साथ हुआ वो दोबारा हो। उसने आराध्या से कहा, आई होप तुमने सबको समझा दिया होगा, क्या तुम उन सबको यहाँ हॉल में बुला सकती हो जो भी इस घर में काम करता है? हाँ भाई, बिल्कुल, आराध्या बोली और उसने रानी को कहकर सभी हाउस हेल्पर्स को वहाँ इकट्ठा कर लिया। कल जो भी हुआ था उसकी खबर पूरे चौहान पैलेस को हो चुकी थी। शिवांशा को उन सबके सामने काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने अपनी नजरें नीची कर ली थी, जो कि वेद को बिल्कुल पसंद नहीं था।
वेद ने शिवांशा का हाथ कसकर पकड़ा और उन सबके सामने सख्त आवाज में कहा, हाँ तो जिस किसी के मन में भी मेरे और मेरी वाइफ को लेकर जो भी सवाल या डाउट है वो पूछ सकता है, बिकॉज तुम सबको सैलरी काम करने की मिलती है, गॉसिप करने की नहीं। वेद को पहले ही इस बारे में थोड़ी बहुत खबर थी, ऊपर से रानी ने कल उसे सब सच बता भी दिया था। पीछे से भले ही लोग कितनी भी बातें कर लें, लेकिन वेद के सामने कुछ भी बोलने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मुझे नहीं लगता कि तुम लोग मेरे सामने कभी कुछ कह पाओगे, तो बेहतर होगा कि पीछे से भी बातें मत बनाओ। मैं इतना हक किसी को भी नहीं देता हूं कि वो मेरी वाइफ को उसके रहने सहने, कपड़े या बिहेवियर से जज करे। वो जैसी भी है मुझे पसंद है। अगर किसी ने भी आगे से शिवांशा को कोई भी काम के लिए टोका है या उसका दिल दुखाया है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उनके साथ क्या होगा, वेद ने ठंडे लहजे में कहा। उन सभी ने बिना कुछ बोले हां में सिर हिला दिया था और अपने अपने काम पर लग गए थे। वेद जिस तरह से बात कर रहा था, सिर्फ उन लोगों को ही नहीं, शिवांशा को भी उसके इस लहजे से डर लग रहा था। जैसे जैसे वेद बोल रहा था, शिवांशा के नाखून वेद की हथेली में धंसते जा रहे थे। जैसे ही वे सब वहां से गए, तो आराध्या बोली, अच्छा मैं रानी से बोलकर ब्रेकफास्ट टेबल लगवाती हूं, आप लोग बैठिए। वंश और अक्षत ब्रेकफास्ट टेबल पर आ गए थे। वहीं वेद शिवांशा के साथ उनसे थोड़ा दूर खड़ा हुआ था। जब उन सबके हटने पर वेद और शिवांशा अकेले थे, तब वेद ने इशारे से शिवांशा को हाथ छोड़ने को कहा। जैसे ही शिवांशा ने अपना हाथ वेद के हाथ से अलग किया, वेद ने अपनी हथेली शिवांशा के सामने कर दी। उसने शर्मिंदगी से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वेद की हथेली उसके नोचने से लाल हो गई थी। मैं अपने नेल्स कट कर लूंगी, शिवांशा जल्दी से बोली। हाँ बेहतर होगा, क्योंकि मुझे इस तरह की प्यार की निशानियां अपनी बॉडी पर लेकर घूमना पसंद नहीं है, वेद ने सिर हिलाकर कहा और फिर शिवांशा को ब्रेकफास्ट टेबल पर चलने को कहा। देखा जाए तो चौहान फैमिली में आज पहली बार शिवांशा का दिन नॉर्मल था। आज वो खुद को वेद की पत्नी कह सकती थी। वेद उसे धीरे धीरे सारे अधिकार दे रहा था। वो खुश थी और चौहान फैमिली के साथ घुल मिलकर उसे अच्छा लग रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद वे सब ऑफिस जाने के लिए निकल गए थे। हमेशा की तरह शिवांशा अकेली रह गई थी। शिवांशा नहीं जानती थी, लेकिन कल के तमाशे के बाद आराध्या ने रानी को समझा दिया था कि उसे कैसे शिवांशा को सबके साथ कंफर्टेबल करना है। रानी शिवांशा के पास आई और बोली, भाभी क्यों ना आज रात का डिनर हम दोनों साथ में मिलकर बनाएं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। क्या सच में मैं किचन में जा सकती हूं ना, शिवांशा ने पूछा। उसके चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव थे। रानी ने मुस्कुराकर हां में सिर हिलाया, फिर उसने शिवांशा की तरफ देखा। वो साड़ी में नॉर्मल तरीके से रह तक नहीं पाती थी, तो काम करना तो दूर की बात थी। रानी ने कुछ सोचा और फिर शिवांशा से बोली, भाभी आपको साड़ी में काम करने में दिक्कत महसूस होगी, तो क्यों ना आपकी सहूलियत के लिए कुछ किया जाए, जिसके बाद आपको भी अच्छा महसूस होगा और काम में भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। शिवांशा रानी के कहने का मतलब नहीं समझी, बस उसने हां में सिर हिला दिया था। रानी शिवांशा को उसके कमरे में लेकर गई और उसे अपने तरीके से तैयार किया था। सच में शिवांशा उसके बाद कंफर्टेबल फील कर रही थी। रानी के साथ सब कुछ समझने के बाद उन्होंने शाम को साथ में खाना बनाया। शिवांशा वापस अपने कमरे में आ गई थी, वो बस वेद के लौटने का इंतजार कर रही थी। वहीं वेद आज आराध्या के साथ एक वर्कशॉप में गया था, जहां उसे हैंडवर्क की हुई एक साड़ी पसंद आई थी। वो उसे शिवांशा के लिए लेकर आया था। जैसे ही वेद शाम को घर आया और उसने अपने कमरे में कदम रखा, तो शिवांशा को देखते ही उसे एक झटका सा लगा। हालांकि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी मायूसी भी नजर आ रही थी। अच्छा ऐसा क्या है जो वेद को झटके दे रहा है? एनी गेसेस? पढ़कर जरूर से समीक्षा कीजिएगा।